एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी विवादास्पद शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं, रॉबर्ट मोजेस।
हाँ, रॉबर्ट मोजेस, एक ऐसा नाम जिसने न्यूयॉर्क शहर को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। पर कमाल की बात यह है कि वो कभी मेयर या गवर्नर जैसे किसी बड़े चुने हुए पद पर नहीं रहे।
ये बात ही अपने आप में हैरान करने वाली है ना,
बिल्कुल
कि कोई बिना चुना हुआ व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे बन गया।
बिल्कुल, उनके बनाए हाईवेज, पुल, पार्क आज भी न्यूयॉर्क की पहचान है। लेकिन ये सिर्फ ईंट और गारे की कहानी नहीं है,
तो फिर क्या है?
ये कहानी है सत्ता की, उस ताकत की जो पर्दे के पीछे से काम करती है, जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। मोजेस की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति बिना औपचारिक जनादेश के इतनी जबरदस्त ताकत जुटा सकता है
और समाज पे इतना गहरा स्थायी असर डाल सकता है।
हाँ, और अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आप कह सकते हैं ताक पर रखकर।
तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे एक आदर्शों से भरा नौजवान न्यूयॉर्क का वो मास्टर बिल्डर बन गया जिसके पास बेहिसाब ताकत थी, और इस कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं।
मोजेस की शुरुआत देखें तो वो एक काफी सुविधा संपन्न माहौल से आते थे।
हाँ, मैनहट्टन का अमीर जर्मन यहूदी परिवार, येल, ऑक्सफोर्ड, मतलब बेहतरीन तालीम मिली उन्हें।
बिल्कुल, और शुरुआती दिनों में उनमें वो आदर्शवाद था, सार्वजनिक सेवा का एक जज्बा था, लेकिन साथ ही एक तरह का बौद्धिक अहंकार भी झलकता था कि वो दूसरों से ज्यादा जानते हैं,
उस दौर में उन्हें यहूदी विरोधी माहौल का भी सामना करना पड़ा था।
है ना?
जी हाँ, और शायद उस अनुभव ने उनमें खुद को साबित करने की जिद को और हवा दी कि अपनी काबिलियत से सबको गलत साबित करना है।
ये आदर्शवाद लेकिन ज्यादा चला नहीं, राजनीति की दुनिया से उनका सामना जल्दी हो गया। हाँ, जब उन्होंने सिविल सेवा सुधारक के तौर पर काम शुरू किया, प्रगतिशील युग था वो, सुधार की बातें हो रही थीं, उनका सपना था कि भाई सरकारी काम योग्यता और विशेषज्ञता से हो।
लेकिन हुआ क्या?
हुआ ये कि स्थापित राजनीतिक ताकतें, जिनके अपने हित थे, उन्होंने उनकी एक न चलने दी, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा।
तो ये पहला झटका था।
बिल्कुल, और यहीं उन्होंने सत्ता का असली खेल सीखा कि सिर्फ अच्छे इरादे और दलीलें काफी नहीं हैं, असली ताकत कहीं और है।
और यहीं से उनका रास्ता बदला। गवर्नर एल स्मिथ के साथ काम करते हुए उन्होंने वो पब्लिक अथॉरिटी वाला मॉडल खोजा।
हाँ, ये बिल्कुल क्रांतिकारी चीज थी उस समय। पब्लिक अथॉरिटी, ये ऐसी संस्थाएं थीं जो सरकार का हिस्सा होते हुए भी काफी हद तक आजाद थी।
आजाद कैसे?
वो खुद बॉन्ड जारी करके पैसा जुटा सकती थीं, टोल या दूसरे चीजों से कमा सकती थीं, और सबसे बड़ी बात, उन पर सरकारी या विधायी नियंत्रण बहुत कम था।
अच्छा, मतलब एक समानांतर सत्ता केंद्र जैसा।
एक तरह से हाँ, मोजेस ने इन अथॉरिटीज के जरिए एक ऐसा आर्थिक साम्राज्य बना लिया जिस पर उनका पूरा कंट्रोल था। लॉन्ग आइलैंड स्टेट पार्क कमीशन पहला बड़ा उदाहरण था, यहीं से उनकी बेहिसाब ताकत की नींव पड़ी।
तो मतलब अब उन्हें मेयर या गवर्नर की ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं रही, पैसा और कानूनी ताकत उनके अपने हाथ में थी।
काफी हद तक, और इसी ताकत के दम पर उन्होंने निर्माण का वो विशाल साम्राज्य खड़ा किया। शुरुआत हुई शानदार पार्कों से, जैसे लॉन्ग आइलैंड और जोन्स बीच, लाखों लोगों के लिए मनोरंजन की जगहें बनी।
ये तो अच्छा काम था।
हाँ, ऊपर से देखने पर, लेकिन इसी में उनकी क्रूरता की झलक भी मिलती है, जमीनें छीनना और डिजाइन में भी
एक तरह का भेदभाव।
भेदभाव
वो कैसे?
जैसे पार्कों तक जाने वाले पुलों की ऊंचाई कम रखी गई जानबूझकर,
ताकि पब्लिक बसें नीचे से न निकल सके।
और बसों में कौन चलता था? ज्यादातर गरीब, अल्पसंख्यक लोग।
तो ये तो बहुत सोची समझी चाल थी।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि विकास हमेशा सबके लिए नहीं होता। फिर आया हाईवे का दौर, ट्राइबोरो ब्रिज, क्रॉस ब्रॉन्क्स एक्सप्रेसवे, पुलों, सुरंगों, सड़कों का जाल।
शहर को गाड़ियों के लिए बनाया गया।
हाँ, लेकिन इसकी कीमत किसने चुकाई? क्रॉस ब्रॉन्क्स एक्सप्रेसवे के लिए ब्रॉन्क्स जैसे कितने ही बसे बसाए मोहल्ले उजाड़ दिए गए, हजारों लोग बेघर हुए।
इसने तो शहर के सामाजिक ताने बाने को ही बदल दिया होगा।
बिल्कुल, नस्लीय और वर्गीय विभाजन और गहरे हो गए। सार्वजनिक परिवहन दशकों तक उपेक्षित रहा, उसका असर आज तक है न्यूयॉर्क में।
और वो स्लम क्लियरेंस वाला मामला, झुग्गी हटाने के नाम पर।
हाँ, उसके नाम पर भी पुराने, अक्सर मजदूर वर्ग और अल्पसंख्यकों के मोहल्ले तोड़े गए। उनकी जगह जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बने, उन्होंने गरीबी को और एक जगह समेट दिया, सामाजिक समस्याएं बढ़ीं।
तो कुल मिलाकर एक भव्य शहर बना, पर शायद ज्यादा बटा हुआ और असमान।
बिल्कुल सही, उनकी विरासत बहुत जटिल है। एक तरफ आधुनिक न्यूयॉर्क का ढांचा है, तो तो दूसरी तरफ भारी मानवीय कीमत और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन।
आखिर क्या चीज थी जो मोसेस को चला रही थी? उनका मूल दर्शन क्या था? कोई फिलॉसफी?
उनका मूल विश्वास ये था कि प्रगति के लिए विशेषज्ञता और कुशलता सबसे जरूरी हैं। लोकतंत्र की धीमी प्रक्रिया, बहस मुबाहसा, ये सब उनके लिए बाधाएं थीं।
उन्हें आम लोगों की समझ पर भरोसा नहीं था?
नहीं, ना ही चुने हुए नेताओं पर। वो मानते थे कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए कठोर तरीके अपनाने पड़ते हैं, चाहे वो अनैतिक ही क्यों ना लगें। उनका एक मशहूर कोट है, इफ द एंड डजंट जस्टिफाई द मींस व्हाट डज, मतलब अगर नतीजा सही है तो तरीका मायने नहीं रखता।
वो खुद को एक तरह का सर्जन समझते थे शायद, जो शहर की बीमारी दूर करने के लिए कड़े ऑपरेशन कर रहा है।
हाँ, वो कहते थे कि शहर को बदलने के लिए मीट एक्स यानी बड़े हथौड़े की जरूरत है। टूट फूट तो होगी,
और वो अंडे तोड़ने वाली कहावत, यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स।
हाँ, लेकिन कैरो की किताब ये दिखाती है कि वो अंडे असल में इंसान थे, उनके घर थे, उनके समुदाय थे, और सत्ता ने शायद उनके अंदर जो पहले से मौजूद अहंकार और बेरहमी थी उसे और बढ़ा दिया।
वो कैरो की बात सत्ता भ्रष्ट नहीं करती, सत्ता उजागर करती है, पावर रिवील्स।
बिल्कुल, सत्ता ने बस उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दे दिया और धीरे धीरे वो किसी की सुनने लायक नहीं रहे, अपनी ही बनाई दुनिया में कैद हो गए।
उनके इतने लंबे करियर में कई अहम मोड़ आए होंगे, लेकिन किताब तीन खास मोड़ों पर जोर देती है ना?
जी हाँ, तीन निर्णायक मोड़ जिन्होंने उनकी दिशा बदली। पहला तो वो शुरुआती हार थी, सिविल सेवा सुधार वाली।
हाँ, वो आपने बताया था। उस हार ने क्या सिखाया उन्हें?
उसने सिखाया कि सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, सत्ता का खेल समझना और खेलना जरूरी है। यहीं से उनका आदर्शवाद पीछे छूटा और वो एक यथार्थवादी, बल्कि कहें तो निर्मम राजनीतिक ऑपरेटर बनने लगे।
और दूसरा मोड़, वो पब्लिक अथॉरिटी वाला।
हाँ, वो सबसे अहम था शायद, जब उन्होंने गवर्नर स्मिथ के साथ मिलकर लॉन्ग आइलैंड स्टेट पार्क कमीशन बनाया, और फिर सबसे ज्यादा ताकतवर ट्रिबोरो ब्रिज अथॉरिटी।
इसने उन्हें लगभग आजाद कर दिया था।
बिल्कुल, इन अथॉरिटीज का अपना पैसा, अपनी कानूनी ताकत, मोसेस अब मेयर, गवर्नर, विधानमंडल, सबसे काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनकी सत्ता वोटों पर नहीं, इन संस्थाओं पर टिकी थी। ये उनकी बेमिसाल और टिकाऊ ताकत का राज था।
और तीसरा मोड़, वो शायद तब आया जब उनकी ताकत को पहली बार सीरियस चुनौती मिली।
सही, वो था जेन जैकॉब्स और लोअर मैनहट्टन एक्सप्रेसवे लोमैक्स का विरोध। मोसेस ग्रीनविच विलेज जैसे ऐतिहासिक इलाके से हाईवे निकालना चाहते थे,
लेकिन लोगों ने विरोध किया।
जबरदस्त विरोध हुआ। जेन जैकॉब्स, जो एक लेखिका और एक्टिविस्ट थी, उन्होंने लोगों को लामबंद किया, और दशकों में पहली बार मोसेस को पीछे हटना पड़ा, प्रोजेक्ट रद्द हो गया।
ये तो बड़ी बात थी।
उनके प्रभाव के कम होने की शुरुआत यहीं से हुई।
मोसेस की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं लगती, इसमें हम सबके लिए, आज के समाज के लिए भी कुछ गहरे सबक हैं।
निश्चित रूप से, सबसे बड़ा सबक तो सत्ता के स्वभाव के बारे में है। वो सत्ता उजागर करती है वाली बात, कि बिना जवाबदेही की शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है।
विशेषज्ञता जरूरी है, पर क्या वो लोकतंत्र से ऊपर है?
यही सवाल मोसेस की कहानी उठाती है। विशेषज्ञता और कुशलता अपनी जगह है, लेकिन जब वो लोकतांत्रिक नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो वो समाज के लिए विनाशकारी भी हो सकती हैं।
और ये भी कि विकास के नाम पर जो फैसले लिए जाते हैं, वो कभी तटस्थ नहीं होते, उनका सामाजिक असर होता है।
बिल्कुल, मोसेस के काम दिखाते हैं कि कैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मौजूदा असमानताओं को और गहरा कर सकते हैं, कैसे उनमें नस्ली और वर्गीय पूर्वाग्रह छिपे हो सकते हैं।
तो एक नागरिक होने के नाते ये हमें क्या याद दिलाता है?
ये हमें लगातार सवाल पूछते रहने की याद दिलाता है, जागरूक रहने की। जब भी कोई बड़ी योजना बने, पूछें, ये किसके फायदे के लिए है, इसकी कीमत कौन चुका रहा है, क्या फैसले पारदर्शी हैं, क्या लोगों की सुनी जा रही है। ये सवाल तब भी जरूरी थे और आज भी उतने ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हमें तीन मुख्य बातें याद रखनी हो रॉबर्ट मोसेस और द पावर ब्रोकर से, तो वो क्या होंगी?
पहली बात मेरे ख्याल में एक भावनात्मक सबक है, वो है महत्वाकांक्षा की मानवीय कीमत। बड़ी बड़ी इमारतें, पुल, सड़कें, इनके पीछे अक्सर बहुत से लोगों का दर्द, उनके उजड़े हुए घर, टूटे हुए सपने होते हैं। हमें ये कीमत कभी भूलनी नहीं चाहिए।
प्रगति के नाम पर इस दर्द को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, शायद सत्ता की संरचना से जुड़ी हुई।
हाँ बिल्कुल, ये एक बौद्धिक सबक है। कि कैसे बिना चुने हुए पर्दे के पीछे की नौकरशाही या अथॉरिटी वाली सत्ता कितनी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो सकती है। पब्लिक अथॉरिटी जैसी संस्थाएं लोकतांत्रिक पकड़ से बचकर अपार शक्ति जमा कर सकती हैं, जो चुने हुए नेताओं से भी ज्यादा स्थायी हो।
ये हमें सिखाता है कि सत्ता सिर्फ चुनाव जीतने में नहीं है, बल्कि व्यवस्था पर भी नियंत्रण में है। और तीसरा सबसे सार्वभौमिक सबक
वो है नागरिक होने का मतलब, नागरिक सतर्कता और भागीदारी का महत्व। हमें सत्ता पर सवाल उठाते रहना होगा, उसे जवाबदेह बनाना होगा, खासकर उस सत्ता पर जो तकनीकी या प्रशासनिक होने का दावा करती है, क्योंकि मानवीय मूल्यों के बिना हासिल की गई प्रगति असल में प्रगति है ही नहीं।
और ये सवाल छोड़ जाती है कि आज के दौर में हमारे अपने शहरों और समाजों में वो कौन से पावर ब्रोकर हैं जो शायद हमारे नजरों से ओझल रहकर हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। सोचने वाली बात है।
बिल्कुल,
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।